আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদামু বাইনাল মা'ই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলম নাশরাহ লাকা সাদরাক ওয়া ওয়াদা'না আনকা বিদরাক আল্লাযী আনকাদা যাহরাক وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب صدق اللہ العظیم. آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست میں ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی فضائل میں ایک مشہور سورت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مقامات اور دیگر چیزوں کو بیان کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ارشاد ربانی ہوا الم نشرح لک صدرک. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ کہ جس نے آپ کی پشت مبارک کو بوجھل کر دیا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب تو اپنے رب کے ساتھ رغبت کریں. یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں تین امور پر گفتگو کی گئی اور تین اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں. شرح صدر، وضع وزر اور رفع ذکر. سب سے پہلے ذکر کیا شرح صدر کا. الم نشرح لک صدرک. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ نہیں کر دیا؟ اب شرح صدر کا مانا سینے کا کھلنا، کشادہ ہونا. علماء نے لکھا کہ سینے کا کھلنا دو طرح سے ہیں، ایک حسی طور پر اور ایک معنوی طور پر. حسی طور پر تو یہ کہ جیسے کسی کا سینہ چاک کیا جائے، مثال کے طور پہ جیسے ڈاکٹر حضرات آپریشن کرتے ہیں تو اس میں مریض کے آکسیجن لگاتے ہیں، ڈرپ لگاتے ہیں، اسے بے ہوش کرتے ہیں، پھر سینہ اس کا چاک کرتے ہیں، پھر وہ دل نکالتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں حسی طور پر سینے کا کھلنا یا کھولا جانا. تو یہ حسی طور پر ہے. اور ایک ہے معنوی طور پر، یعنی کسی بات کو سمجھنے کے لیے سینے کا کشادہ ہونا. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ اقدس دونوں لحاظ سے کھولا گیا، حسی طور پر بھی اور معنوی طور پر. علماء نے لکھا کہ حسی طور پر تین مرتبہ سینہ اقدس کو کھولا گیا، بچپن میں بھی، اس کے بعد بھی اور معراج کی رات بھی. روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب رونق افروز تھے تو ایک دن آپ کے رضائی بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہا، اماں، ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. دو آدمی آئے، ان کو پہاڑ پر لے گئے اور وہاں جا کر قتل کر دیا. وہ گھبرائیں، پریشان ہوئیں اور تیزی میں اپنے گھر سے باہر نکلیں تو دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سامنے کھڑے مسکرا رہے، لیکن آپ کی رنگت زرد ہے بالکل. دوڑ کر گئیں، آپ کو سینے سے لگایا، پیار کیا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا دو آدمی آئے، मुझे पहाड़ पर ले गए, उन्होंने वहाँ मुझे लिटाया, मेरे सीने को चाक किया। यानी ये पहली मर्तबा सीने अकदस को हिस्सी तौर पर खोला गया था और उसके अंदर न जाने क्या क्या कुछ रखा, और उसके बाद सीने अकदस को उन्होंने उसी तरह बंद कर दिया। इसी तरह इसके बाद भी वाकया हुआ, और फिर मेराज की रात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो रिवायत में मौजूद है कि सीने अकदस को चाक किया, कल्ब मुबारक को निकाला, आब जमजम से धोया, सोने के तश्त में रखा, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़ी हा आई नानी तुबसरान व उजुनान तस्मान, कि मैंने देखा कि इसमें दो आँखें हैं जो देखती हैं, दो कान हैं जो सुनते हैं। किसमें? कल्ब मुबारक में। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सीना अकदस हिस्सी तौर पर भी खोला गया और मानवी तौर पर भी खोला गया। अब आप देखेंगे सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की कई शानें हैं। एक है आपकी नूरानी शान, एक है जिस्मानी शान, और एक है हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी हकीकत को आपके रब के सिवा कोई नहीं जानता। बशरियत, नूरानियत, हकीकत, ये सब आपका लिबास है। लिबास बशरी में तशरीफ़ लाए, जब बशरी सिफत का गलबा था तो ताइफ के शहर में जिसमें मुबारक पर संगबारी हुई, जिसमें अकदस लहूलहान हो गया, वाकयात मशहूर हैं, सब जानते हैं कि उन लोगों ने शरीर बच्चों को आपके पीछे लगा दिया, आप चलते थे, जब थक कर किसी जगह बैठते थे वो फिर आकर उठाते थे, चलाते थे और फिर संगबारी करते थे और इस किस्म की गुस्ताखियां आपकी शान में करते थे। तो जब बशरियत का गलबा था तो खून जिसमें मुबारक से निकला। इसी तरह मैदान उहद में जब कुफार ने बहुत करीब से हमला किया नबी पाक अलैहिस्सलाम पर, तो दंदान मुबारक शहीद हुए। उस वक्त भी चेहरे अनवर पर और जिसमें मुबारक पर खून निकला। एक सहाबी ने अपना होंठ रखकर, अपना मुंह रख के और वो उस खून को पी लिया। सरकार ने फरमाया, तुझ पर जहन्नुम की आग हराम हो गई, मेरा खून तेरे खून में शामिल हो गया। इस किस्म के वाकयात सारे मौजूद हैं। कहने का मकसद ये है कि जब बशरियत का गलबा था तो खून भी निकला जिसमें मुबारक लहूलहान हुआ, और जब नूरानियत का गलबा था तो जिसमें मुबारक सीने अकदस चीरा गया लेकिन एक कतरा भी नहीं निकला। मेराज की रात कल्ब मुबारक को बाहर निकाल लिया गया, यानी अगर किसी का सीना चीरा जाए तो उस आदमी की मौत वाकई हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का सीने अकदस चीरा गया, सरकार देख रहे हैं। कल्ब मुबारक को बाहर निकाला गया, सरकार देख रहे हैं। आब जमजम से धोया गया, सरकार देख रहे हैं। सोने के तश्त में रखा गया, फिर उसके अंदर न जाने कितनी चीज़ें, उसमें नूर, इरफान, हिकमत, क्या क्या चीज़ें सीने अकदस में रख के फिर बंद कर दिया गया। आका अलैहिस्सलाम देख रहे। तो जब बशरियत का गलबा था तो खून भी निकला, दंदान मुबारक भी शहीद हुए, लेकिन जब नूरानियत का गलबा था तो सीने अकदस चीर कर कल्ब मुबारक बाहर निकाल लिया गया लेकिन एक कतरा भी नहीं निकला। पता चला कि ये सब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का लिबास हैं। तो लिबास बशरी में सरकार तशरीफ लाए, हमारी हकीकत, हमारी बशरियत हमारी हकीकत है, और सरकार की बशरियत सरकार की सिफत है। सिफत अगर छिन जाए तो आदमी ख़त्म नहीं होता, हाँ अगर हकीकत छिन जाए तब आदमी ख़त्म हो जाता। तो अल्लाह ने फरमाया, अलम नशराह लक सदरक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके खातिर आपके सीने अकदस को कुशादा नहीं कर दिया? तो यहाँ पर मानवी तौर पर सीने अकदस को कुशादा करने का जिक्र है। अब इसकी मिसाल आप ये समझें, एक आदमी की जिम्मेदारी लगाई जाए कि तुम्हें एक इलाके को सही करना है, ठीक है। अब अगर आपकी जिम्मेदारी लगाई जाए कि पूरा इलाका जो है ये आपके जेर असर है, आपकी निगरानी में है, इसमें जितने लोग रहते हैं उनके अखलाक व किरदार को, आमाल व अफ़ाल को, इन तमाम चीज़ों को आपको दुरुस्त करना, तब कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी और इसमें आपकी पीठ पर एक बोझ होगा, एक जिम्मेदारी होगी, एक फिक्र होगी। میں کس طرح کروں؟ یہ تو ایک علاقے کی بات ہے، اور جس ذات کے ذمے پوری کائنات کی ذمہ داری لگا دی گئی، پوری انسانیت کی ذمہ داری لگا دی گئی، اور اس معاشرے میں، ذرا سا غور کریں، اس معاشرے میں جہاں ہر چیز عام، زناکاری، شراب خوری، دھوکہ دہی، جوا، چوری، قتل و غارت گری، ہر چیز عام ہے، دھڑلے کے ساتھ سب کر رہے ہیں، شیطانیت نے پوری طرح اپنے پنجے انسانیت پر گاڑ دیے ہیں، انسان انسانیت سے گر چکا ہے، عورت کی حیثیت پیر کی جوتی کے برابر، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، لڑائیاں شروع ہوتی ہیں تو نسلوں تک لڑائیاں چلی جاتی، اپنے ہاتھ سے بت بنا کر سامنے رکھتے ہیں، اسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، اسی پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ انسان کی عقل کا حال، اتنا انسان انسانیت سے گر چکا۔ ایسے معاشرے میں ایک پاکیزہ نفس انسان جو پورے معاشرے کو، کیا پوری دنیا کو صحیح کرنا چاہتا ہے، کتنی ضرورت تھی کہ اس کا سینہ کشادہ کیا جائے، کتنی ضرورت تھی کہ اس کی پشت مبارک پر جو بوجھ ہے وہ ہلکا کیا جائے۔ اور یہ اسی صورت میں تھا کہ جب قلب مبارک کو تقویت پہنچے، استحکام ہو، استقامت ہو، اور یہی وجہ تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تنے تنہا یہ کام شروع کیا، اس کے بعد کوئی نہیں تھا، یعنی آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ پہلی وہ خاتون جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، قلب مبارک کو جس سے تسکین پہنچی، جس کی تسلی سے تسکین پہنچی، وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ فرماتا ہے وودانا ان کا وزرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی پشت مبارک کو بوجھل کر دیا تھا، الذی انقض ظہرک، یعنی ہم نے اس بوجھ کو اتار دیا جس نے پشت مبارک کو بوجھل کر دیا۔ ظاہر ہے ایک ذمہ داری تھی پورے معاشرے کو درست کرنا ہے، اور کافر ایک وقت لے کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچ گئے، اے ابو طالب، یہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، لات کو، عزا کو، منات کو، یہ جتنے بھی ان کے خدا تھے، سرکار نے فرمایا تھا نا ان بتوں کو مت پوجو جن کو تم نے بنایا ہے، اس خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکو جس نے تم کو بنایا۔ تو وہ سب کے سب ایک وفد کی صورت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ اس کام سے رک جائیں، دین اسلام کی تبلیغ جو کر رہے ہیں اور ہمارے بتوں کو جو برا کہہ رہے ہیں اس سے رک جائیں، ہم تین شرطیں لے کر آئیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ کسی صاحب جمال و صاحب مال عورت سے شادی کریں تو وہ ہم کرانے کے لیے تیار، ہم ان کی شادی کسی اچھے خاندان میں خوبصورت اور مال و دولت والی عورت سے کراتے ہیں، اگر یہ اپنی سرداری قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ان کو اپنا سردار مان لیں، ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار، اگر یہ چاہتے ہیں کہ کثیر مال و دولت ان کو دیا جائے، ہم وہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار۔ یہ تین شرطیں لے کر آئے ہیں، آپ ان کو بلائیے، ان سے پوچھئے، ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی یہ مان لیں، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین اسلام کی تبلیغ سے رک جائیں، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ایک خدا کے سامنے جھکنے کے لیے نہ کہیں۔ اب آپ ذرا سا غور کریں، اس وقت کتنا کٹھن مرحلہ تھا، پورا معاشرہ آپ کا دشمن، وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے وہی اب مخالفت میں، یعنی جب سے دعوت شروع ہوئی اسی وقت سے عداوت شروع ہوئی، ورنہ اس سے پہلے سب صادق اور امین کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے بلایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے میرے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ عرب کے قبائل کے سردار آئے ہیں، یہ تین شرطیں لے کر آئے ہیں، ان میں سے ایک شرط مان لو۔ فرمایا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ کسی حسین و جمیل عورت سے جو صاحب جمال و صاحب مال ہو، یعنی مال و دولت بھی اس کے پاس، تم اگر نکاح کرنا چاہو تو یہ وہ کرانے کے لیے تیار ہے۔ अगर तुम चाहो कि तुम्हारी सरदारी कायम हो तो ये तुम्हें अपना सरदार बनाने के लिए भी तैयार, और अगर तुम मालो दौलत चाहते हो, कसीर तुम्हें मिले तो कसीर मालो दौलत ये तुम्हें देने के लिए तैयार। लेकिन शर्त यह है कि दीन इस्लाम की तबलीग से तुम रुक जाओ। अब गौर करें, एक चचा वाहिद जो आपके आगे ढाल बनकर खड़े होते थे, जो काफिरों के और आपके दरमियान आ जाते थे और काफिर डरते थे कि इनकी वजह से हम इनको कुछ नहीं कह सकते, वो भी फरमा रहे, बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये सारे ये आए हैं, शर्तें लेकर आए हैं, कोई एक शर्त मान लो, दीन इस्लाम की तबलीग से रुक जाओ। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का अज़्म, इस्तक़लाल, सरकार की इस्तक़ामत, फरमाया ऐ मेरे चचा, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर चांद और बाएं हाथ पर सूरज भी रख दें तब भी मैं अपने काम से बाज नहीं आऊंगा। पूरी दुनिया का मालो दौलत लाकर मेरे कदमों में ढेर कर दें तब भी मैं अपनी इस तबलीग से बाज नहीं आऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम मेरे जिम्मे लगाया है, मैं इस काम को हर सूरत में पूरा करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस काम पर निसार हो जाऊंगा, कुर्बान हो जाऊंगा, मेरा रब इंशाअल्लाह मेरी मदद करे। ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम का अज़्म और इस्तक़लाल। वरना मामूली धमकियों से लोग डर जाते हैं, दुश्मनी से लोग डर जाते हैं। गौर करो, एक पाकीज़ा नफ्स इंसान है, पूरा माशरा दुश्मन है, एक खुदाए वादा उला शरीक के सामने झुकने वाला एक आदमी है और पूरा माशरा 360 या हज़ार खुदाओं के सामने झुक रहा है, लेकिन वो इंसान इस्तकामत के साथ डटा हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सीने अक़दस को ऐसा कुशादा किया, उसमें अपना नूर इस तरह डाला, इस्तकामत डाली, बुर्दबारी डाली, सब कुछ उस सीने अक़दस में भर दिया कि सरकार ने बेधड़क होकर ऐलान फरमा दिया, ये जो चाहें करें, मैं दीन इस्लाम की तबलीग से बात नहीं आऊँ। ये वो झूठे हैं, मैं इन झूठों को सच्चा नहीं कह सकता, सच्चा सिर्फ मेरा खुदा है जो वाहदहू ला शरीक है और कोई उसका शरीक नहीं है। ये जितने भी बुत हैं ये सब झूठे हैं, ये तो मजबूर हैं, मेरा खुदा मुख्तार है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब बबांगे दोहल ये फरमाया तो हजरत अबू तालिब भी खामोश हो गए और उनके अंदर भी इस्तकामत पैदा हुई और कहा ठीक है भतीजे, आप अपना काम कीजिए, अब जो कुछ होगा मैं निमट लूँगा, मैं देख लूँगा ये लोग क्या करते हैं। और वो सब के सब अपना समूह लेकर रह गए। अलम नशराह लक सदरक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपकी खातिर आपके सीने अक़दस को कुशादा नहीं कर दी? वदअना अनका विजरक, और वो बोझ आपसे उतार दिया, अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, जिसने आपकी पीठ को बोझल कर दिया। क्या मतलब? जो जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, एक फिक्र होती ना इंसान को, मुझे ये काम करना है, मुझे ये सही करना है, ये गलत काम हो रहा है, इस गलत काम को सही करना है, फला को रोकना है, तो यहाँ एक को नहीं रोकना है, यहाँ पूरे माशरे को रोकना है, यहाँ पूरी इंसानियत को जहालत के अंधेरे से निकाल कर इल्म की रोशनी, ईमान की रोशनी, ईमान का नूर अता करना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी नबी पाक अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, हमने उस बोझ को उतार दिया जिसने आपकी पीठ को बोझल कर दिया। यानी अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद नबी पाक अलैहिस्सलाम के शामिल हाल हुई और नतीजा ये हुआ, एक मुसलमान हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, होते होते ताकत बढ़ती गई, तादाद बढ़ती गई, यहाँ तक के नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के वक्त 1,24,000 सहाबा मौजूद थे। सिर्फ 23 साल के अरसे में, 40 साल तो सरकार खामोश रहे, कोई तबलीग नहीं फरमाई, सिर्फ अपना हाल, अपनी कैफियत, अपनी सीरत उनके सामने पेश की, अपने लैलो नहार उनके सामने पेश की, सरकार की जलवत और खलबत उन्होंने देखी, चलना फिरना देखा, उठना बैठना देखा, ईमानदारी देखी, सच बोलना देखा, अमानत और सदाकत और दयानत को देखा। 40 साल तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी उनके सामने रखी, अपनी बेताक सीरत, बाकिरदार अखलाक सीरत उनके सामने रखी, और उसके बाद फिर दीन इस्लाम की दावत शुरू की। जैसे ही दावत शुरू हुई वैसे ही अदावत शुरू हुई, दुश्मनियाँ हुई, पत्थर बरसाए गए, राह में कांटे बिछाए गए, अजीज और रिश्तेदारों को शहीद किया गया, जानिसार सहाबा को बेदर्जी के साथ जुल्मन शहीद किया गया, ख़ानदान नबुवत के अफराद ने जाम शहादत नोश किया, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने मकसद पर जो अल्लाह ने जिम्मेदारी उन पर डाली थी उस पर डटे रहे। अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, अल्लाह फरमाता है हमने वो बोझ उतार दिया जिसने आपकी पीठ को बोझल कर दिया। आहिस्ता 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 ये दीन की तबलीग बढ़ती गई, लोग जौग दर जौग इस्लाम में दाखिल होते गए, और फिर वो वक्त आया कि कुफ्र और शिर्क को हमेशा के लिए मिटा कर रख दिया गया, और दीन इस्लाम का परचम हर जगह शर्क से गर्ब तक, जुनूब से शुमाल तक, एक पाकीज़ा नफ्स इंसान ने सिर्फ 23 साल के अरसे में पूरी दुनिया की काया पलट दी। जो राहजन थे राहवर हो गए, बुतपरस्त थे खुदा परस्त हो गए, जो अपने अखलाक व किरदार की वजह से हैवानों से बदतर थे फिर वही अपने अखलाक व किरदार की वजह से फरिश्तों से आला हो गए। एक निगाह करम की बात थी, एक पाकीज़ा नफ्स इंसान ने पूरी इलाके क्या पूरी दुनिया की पूरी इंसानियत की काया पलट दी। इसी को अल्लाह फरमाता है, वदाना अनका विजरक अल्लज़ी अनकद ज़हरक, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने वो बोझ आपसे उतार दिया जिसने आपकी पीठ को बोझल कर दिया। उसके बाद खुशखबरी सुनाई जा रही है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील मेरे पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब पूछता है क्या आप जानते हैं कि मैंने किस तरह आपके ज़िक्र को बुलंद किया, क्या आप जानते हैं कि मैंने किस तरह आपके ज़िक्र को बुलंद किया। फरमाते मैंने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है। जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिक़े कायनात फरमाता है, महबूब हमने आपके ज़िक्र को इस तरह बुलंद किया कि महबूब अब जहाँ पर मेरा ज़िक्र होगा वहीं आपका ज़िक्र हो, जहाँ जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहीं आपका ज़िक्र हो। इस तरह मैंने आपके ज़िक्र को अपने ज़िक्र के साथ लाजिम और मलजूम कर दिया। अब आप गौर करें, जहाँ जहाँ अल्लाह का ज़िक्र है वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है। मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, अजानों में, नमाजों में, कलमे में, वज़ाइफ़ में, जहाँ अल्लाह का ज़िक्र है वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र। वरफ़ाना लका ज़िक्र, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। और ज़िक्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी देखनी हो तो ये देखो कि बुलंद करने वाला कैसा है। अगर किसी की बुलंदी देखनी है ना, मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो एक बॉल लेकर आसमान की तरफ फेंकता है, जितनी उसकी ताकत है उतनी बुलंद करेगा। एक नौजवान फेंकता है वो उससे ज़्यादा, एक जवान फेंकता है वो उससे ज़्यादा, एक पहलवान, एक ताकतवर आदमी ऊपर बॉल फेंकता है वो उससे ज़्यादा। क्या मतलब? जिसकी ताकत जितनी है, जिसकी कुव्वत जितनी है, वो उतना ही उसको बुलंद कर दे। अब अगर ये देखना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कितना बुलंद है तो फिर ये देखो कि बुलंद करने वाला कितना बुलंद, बुलंद करने वाला खालिक कायनात है जो सबसे बुलंद है, उससे बुलंद कोई नहीं है। तो जब बुलंद करने वाला वो है जो तमाम ताकत का सरचश्मा है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह अपने हर चाहे पर कादिर है, यानी जो वो चाहे कर सकता है। तो जब वो अपने हबीब के ज़िक्र को बुलंद कर रहा है तो उस ज़िक्र को रोकने वाला कौन है, उसको माज़ल्ला पस्त करने वाला कौन? बुलंद करने वाला खालिक कायनात है, और उसने अपने हबीब के ज़िक्र को ऐसे बुलंद किया कि आज पूरी कायनात में आप देख लें, जहाँ जहाँ अजान हो रही है अल्लाह का ज़िक्र है, वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र। पूरी कायनात में नमाज हो रही है, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, बेशुमार लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जहाँ अल्लाह का ज़िक्र है नमाज में, वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र। अजानों में, नमाजों में, कलमों में, वज़ाइफ़ में, हर जगह जहाँ भी आप देखने अल्लाह का ज़िक्र है वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, और उसने नबी के ज़िक्र को अपने ज़िक्र के साथ ऐसे लाजिम और मलजूम कर लिया कि आप अगर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गौर करें कलमे पर कि जहाँ पर इसमें अल्लाह की हे ख़त्म हो रही है वहीं इसमें मोहम्मद की मीम शुरू हो रही। ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह फिर वाओ बीच में लगा दिया जाए वाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने यह गवारा ना किया कि मेरे और मेरे हबीब के नाम के दरमियान वाओ भी आ जाए, उस वाओ को भी नहीं रखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जहाँ इसमें अल्लाह की हे ख़त्म हो रही है वहीं इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीम शुरू। इतना क़ुर्ब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया कि नाम में भी दूरी गवारा ना की। तो जब बुलंद करने वाला खालिक कायनात है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो इस सूरह मुबारका में अब ये आयत नबी पाक अलैहिस्सलाम को तसल्ली दे रही, अलम नशरा लक सदरक व वदाना अनका विजरक अल्लज़ी अनकद ज़हरक, यहाँ तक तो ये बताया जा रहा है महबूब आपके सीने को आपके लिए कुशादा कर दिया, हमने वो बोझ उतार दिया जिसने आपकी पीठ को बोझल कर दिया। अब खुशखबरी दी जा रही, व रफ़ाना लक ज़िक्रक, हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब वो ज़िक्र ऐसा बुलंद है कि दुनिया में भी नबी का ज़िक्र है, कब्र में भी नबी का ज़िक्र है, हशर में भी कल नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होगा और जन्नत में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होगा। फ़इन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा, अब आगे बताया जा रहा है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पस यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी, ये नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी, मुश्किल के साथ आसानी। फ़इन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा, हाँ बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी, यानी जैसे मुश्किल परेशानी आएगी उसके साथ ही आसानी आ जाएगी, तंगी होगी फराखी आ जाएगी, मुश्किल होगी आसानी आ जाएगी, मुसीबत होगी आसानी हो जाएगी, मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फ़ाइज़ा फ़रग तफ़न सब, पस जब आप फ़राइज़ नबुव्वत से फारिग हों व इला रब्बे का फरगब, तो अपने में अपने रब से रागिब हो जाएं, उसकी तरफ रागिब हो जाएं, फ़राइज़ नबुव्वत से जब आप फारिग हों तो अपने रब की तरफ रागिब हो जाएं। इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान भी बयान फरमाई, आपके ज़िक्र मुबारक की बुलंदी का ज़िक्र भी किया, आपको तसल्ली भी दी और मुश्किलात जो आ रही थी उनमें आसानी की नबीद भी सुनाई, और फ़राइज़ नबूवत से फारिग होने के बाद रब की तरफ रुजू करने का भी अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म फरमाया। पता ये चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो अजीम व शान ज़िम्मेदारी दी गई थी, खालिक कायनात ने अपने करम से हुजूर अलैहिस्सलाम को अज़्म हौसला हिम्मत इस्तेकामत अता फरमाई और पहले ही सीने अक़दस को इतना मुस्तहकम कर दिया कि फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं रही। अब पूरी दुनिया ने मुखालफत की, पूरे माशरे ने मुखालफत की, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इस्तेकामत के साथ अपने उस मौक़िफ़ पर कायम रहे, उस ज़िम्मेदारी को पूरा करते रहे जो उनके रब ने उन पर डाली थी, और उसी रब के करम से हुजूर अलैहिस्सलाम उस ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हुए। इसीलिए आपने खुतबा हज्जतुल विदा में लोगों से पूछा, बताओ मैंने खुदा का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? सब ने कहा हाँ बेशक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। क़ुरान ने कहा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, आज के दिन नेमतें तमाम हो गईं, रब ने आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। पता ये चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने खुद आपके सीने अक़दस को आपके लिए खोल दिया। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, और इस सूरह मुबारका में जो कुछ बयान किया गया है और सरकार के ज़िक्र की जो बुलंदी बयान की गई है, हमें भी उस बुलंद ज़िक्र को करने की वजह से हमें भी बुलंदी मिल जाए। ये ज़िक्र ऐसा बुलंद है कि इस ज़िक्र को अब कोई बुलंद नहीं करेगा, वो बुलंद हो चुका। जो ये ज़िक्र करेगा, ये ज़िक्र अपने करने वाले को बुलंद कर दे। इसीलिए हम नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक करते हैं कि इसी ज़िक्र मुबारक की वजह से अल्लाह तबारक व ताला हमारे नामे आमाल में नेकियों का इजाफ़ा फरमाए और इसी की वजह से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।